परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक होंगे और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस अध्ययन में स्वागत करता हूँ और विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 2 तक का अध्ययन कर लिया है और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और आज का विषय है परमेश्वर से धार्मिकता की प्राप्ति। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज हम अपने अध्ययन को रोमियो की पत्री अध्याय 3 से आरंभ करेंगे और आज का विषय है परमेश्वर से धार्मिकता की प्राप्ति। तो आइए हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। यहां पर ध्यान दे, लाभ, लाभ का अर्थ है आवश्यकता से अधिक बहुतायत। यह प्रश्न यहूदियों के साथ बंधी परमेश्वर की वाचा का बाहरी चिन्ह खतना से संबंधित है और ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस परमेश्वर द्वारा स्थापित अंतर को मिटाने के संकट में है। प्रश्न यह है कि यदि यहूदी और अन्य जाति परमेश्वर के समक्ष एक ही स्तर पर हैं, तो यहूदियों का प्रत्याशित लाभ क्या है और खतना से क्या लाभ। मेरे मित्रों, मैं आपके लिए डॉक्टर जेम्स स्टेफलर का कथन दोहराना चाहता हूं, यदि खतना अपने आप में धार्मिकता नहीं दिला सकता, यदि खतना रहित अवस्था में इसे असंभव नहीं बनाती, तो इसमें कभी क्या लाभ रहा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने मनुष्यों में जो अंतर बनाया वह अंततः एक ही प्रतीत नहीं होता है। मेरे विचार में आज यही एक प्रश्न हमें सुनने को मिलता है। मैं इसे विशेष करके सुनता हूँ क्योंकि जो सुसमाचार मैं सुनाता हूँ उसके अनुसार कलीसिया की सहायता उद्धार के लिए लाभकारी नहीं है। उद्धार के लिए आप कैसे भी अनुष्ठान पूरा करें वह अर्थहीन ही है। परमेश्वर ने संसार को क्रूस तक ही सीमित कर दिया है। वह आपसे न तो कहीं की सदस्यता लेने को कहता है और न ही कुछ करने को कहता है। परमेश्वर पापी मनुष्य से बस एक ही बात कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। और जब तक मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर न दे तब तक परमेश्वर के पास उससे कहने के लिए और कुछ नहीं है। जब वह उद्धार पा लेता है तब परमेश्वर उससे कलीसिया की सदस्यता की बात करता है और बपतिस्मा लेने को कहता है। मेरे मित्रों, आज हम विश्वासियों को कहते सुनते हैं, क्या मेरी कलीसिया, मेरा विश्वास वचन, मेरी सदस्यता, मेरा बपतिस्मा मेरे उद्धार में सहायक नहीं है? इसका उत्तर है जी नहीं। इससे आपके उद्धार में कोई लाभ नहीं, परंतु यदि आपने उद्धार पा लिया है तो यह सब चिन्ह स्वरूप होते हैं। यह सब संसार पर प्रकट करने के लिए है कि आप क्या हैं। अब यदि आप खरे नहीं उतरते तो आपकी कलीसियाई सदस्यता और बपतिस्मा आदि सब कलंक है और पावन होने की अपेक्षा वे निंदित होते हैं। अब पौलुस प्रश्नवाचक उत्तर देता है, यहूदियों को इससे क्या लाभ हुआ? आइए हम पढ़ें रोमियों के पत्र 3:2। लिखा है, हर प्रकार से बहुत कुछ, पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि निसंदेह यहूदियों को लाभ है, परंतु यह लाभ एक उत्तरदायित्व भी सौंपता है। हमें यहूदियों के इस लाभ पर ध्यान पूर्वक सोचना है क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में बहुत उलझन उत्पन्न हुई है। मैं सेमिनरी के शिक्षकों को जानता हूं जो पुराने नियम के यहूदी धर्म और नए नियम के मसीही धर्म में अंतर को अनदेखा करते हैं। पौलुस स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने इसराइल को परमेश्वर की व्यवस्था दी है। वे परमेश्वर के वचन की घोषणा करते थे, परंतु वचन में उसके लिए विशेष करके कुछ था। परमेश्वर ने इसराइल राष्ट्र का त्याग नहीं किया है। मैं धर्म विज्ञान के ज्ञाताओं को इसी बात पर परखता हूं, क्या परमेश्वर के पास इसराइल के लिए भविष्य है? मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर की दृष्टि में इसराइल का भविष्य नहीं है तो मैं नहीं सोचता कि उसकी दृष्टि में आपका भी कोई भविष्य है या धर्म विज्ञान के प्रधानाध्यापक का भी कोई भविष्य है। परमेश्वर सब प्रतिज्ञाएं इसी वचन में देता है। परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 को सिद्ध करेगा और उत्पत्ति 12 में अब्राहम के साथ बांधी वाचा को भी पूरा करेगा। एक बार फिर डॉक्टर स्टेफलर की बात सुने जो वह इसराइल के विषय में कहते हैं। उसका परमेश्वर का लाभ यह नहीं था कि उसने यहूदी धर्म बोया और मसीह धर्म काटा। इससे तो यहूदी धर्म समाप्त हो जाता है। सबसे पहले तो यह कि उन्हें परमेश्वर का वचन सौंपा गया था। वचन केवल एक पुस्तक संग्रह ही नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें यहूदियों को प्रतिज्ञाएं दी थी जो अभी पूरी नहीं हुई है और वे विशेष करके उन्हीं के लिए थी। पुराना नियम जो उसके वचन का अभिलेख है में एक भी प्रतिज्ञा कलीसिया की या संस्थागत कलीसिया के लिए नहीं है। मेरे मित्रों, उसमें कलीसिया की भविष्यवाणी नहीं है। उसमें एक राज्य का पूर्वानुमान है जिसमें यहूदी प्रधान होगा और अपनी राष्ट्रीय पहचान से वंचित नहीं होगा जो कलीसिया में उसके रहने से होता है। मेरे प्रियो, मेरे विचार में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरी बात है जो उन्होंने परमेश्वर के वचन के संबंध में कही है। इस विषय में महान धर्मज्ञाताओं में मतभेद है। डॉक्टर अंडोल्फ साफिर यहूदी से विश्वास में आए थे और उन्होंने यह उत्कृष्ट एवं स्पष्ट बात कही। यह प्रचलित विचार कि इसराइल कलीसिया की प्रतिशाया है और अब वह उपमा पूरी होती है हमारे क्षेत्र से विलोप हो जाती है, पूर्ण रूप से धर्मशास्त्र विरोधी है। मेरे मित्रों, इसराइल पूरी हुई प्रतिछाया नहीं है जो कलीसिया में विलीन हो गया है, अपितु वह तो कलीसिया का आधार है जिस पर कलीसिया स्थापित है। मेरे मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है और पौलुस यही बात यहाँ पर कहता है कि यहूदियों को एक बड़ा लाभ प्राप्त है, परमेश्वर की दृष्टि में उनका भविष्य है और उसकी अनिष्ठा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का निराकरण नहीं करेगी। सुनिए पौलुस आगे क्या कहता है, रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। ध्यान दीजिए, कुछ विश्वासघाती निकले, क्या उनका विश्वासघात परमेश्वर की विश्वास योग्यता को रद्द कर देगा, यह एक और आपत्ति है। पौलुस फिर अपनी बात दोहराते हुए इसका उत्तर देता है, यदि यहूदी का लाभ अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं करता तो इसका अर्थ क्या यह नहीं कि परमेश्वर की प्रजा के साथ उसकी विश्वास योग्यता समाप्त हो गई। यहूदी चूक गए तो क्या परमेश्वर भी चूक गया, जी नहीं। इसराइल के लिए मुक्तिदाता भेजने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनकी स्वैच्छिक अवज्ञा और परमेश्वर त्याग के कारण चूक नहीं गई। उस राष्ट्र के भविष्य के संबंध में परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाएं उसकी महिमा के निमित्त पूरी होंगी, चाहे वे अनिष्ट ही क्यों ना हो। अब मेरे मित्रों, आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि मेरे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मेरे विश्वास योग्यता पर निर्भर नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं बहुत पहले ही परिव्यक्त हो जाता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद हो। हम रोमियों की पत्री 3 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। दूसरे शब्दों में यह प्रश्न करने वाला अविश्वासी झूठा है और परमेश्वर एक दिन उसे झूठा सिद्ध करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की विश्वास योग्यता सच्ची है और अपरिवर्तनीय है। यह कैसी महत्वपूर्ण बात है। हम पहला योहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है, जिसने परमेश्वर में विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। मेरे मित्रों, यह कैसी विडंबना है कि विश्वास ना करें कि परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए मरने को दे दिया। मैं आपको बताता हूं कि यह कैसा भयंकर है। आप परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करके परमेश्वर को झूठा बनाते हैं। आइए हम पढ़ें रोमियों के पत्र 3 अध्याय उसके 5 पद में, सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें, क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है, यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं। मेरे मित्रों, किसी प्रकार कुशल वाक्शल द्वारा विवाद किया जा सकता है कि इसराइल राष्ट्र का अविश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता के विरुद्ध है और परमेश्वर उसके नाम को बड़ी महिमा लाने वाले को दंड नहीं देगा। इसका अधिक उचित अनुवाद होगा, क्या परमेश्वर जो क्रोध में इनका न्याय करने आता है अन्यायी है। परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार प्रचार में यह पौलुस की कड़ी आलोचना थी। यदि परमेश्वर अपने महिमान्वयन के लिए पाप का प्रयोग करता है तो उसे पापी को दंड नहीं देना चाहिए। पाप करने के लिए यह मनुष्यों का बहाना बन गया था। रोमियो के पत्री 6 अध्याय उसके 1 पद में यह फिर हमारे सामने आएगा, तब हम इस पर विचार करेंगे। पौलुस यूनानी भाषा में ऐसा प्रश्न पूछता है कि उसका उत्तर नकारात्मक वाक्य में ही होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। पौलुस कहता है, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि पौलुस आत्मा की प्रेरणा से नहीं लिख रहा था, परंतु यहां वह सीमित मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर यह प्रश्न पूछता है। मेरे मित्रों, यहां सारांश यह है, यदि मेरी आधार्मिकता परमेश्वर की अद्भुत आत्कृष्ट असीमित विश्वास योग्यता अनुग्रह के निमित्त प्रकट करती है, तो क्या परमेश्वर का अधिकार है कि मुझे दंड दे? पौलुस यहाँ यही पूछ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि पौलुस के युग में उद्धार से रहित संसार समझता था कि परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होने वाले उद्धार का प्रचार कर रहा था। कैसी उत्तम बात है यह। हम रोमियो के पत्र 3:6 में पढ़ते हैं, कदापि नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, यदि परमेश्वर को हमें दंड देने का अधिकार नहीं है क्योंकि हमारे पाप परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर को अन्य किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनमें भी परमेश्वर के सामान्य अनुग्रह को प्रकट करने का कोई न कोई कारण होगा। पौलुस की प्रतिक्रिया फिर से इस विचार के विरुद्ध प्रभावशाली एवं दो टूक इनकार है कि परमेश्वर अन्यायी है। यहाँ विवाद का विषय यह है कि यह विशेष पाप यदि परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह बढ़ाता है तो सब पाप एक से ही होते, इस कारण परमेश्वर संसार का न्याय करने योग्य ना होगा। वह संपूर्ण पृथ्वी का न्याय होने में या न्याय होने के अपने सिंहासन से हट जाएगा। मेरे मित्र, इस तर्क के आधार पर हिटलर को दंड नहीं मिलना चाहिए। आप जो भी हैं, अविश्वासी भी हो, तो आपका भी विचार यही होगा कि कुछ लोगों को तो दंड मिलना ही चाहिए। आप संभवतः यह नहीं मानेंगे कि आपको दंड मिलना चाहिए, परंतु निश्चय ही आपके विचार में कुछ लोग तो दंड के योग्य हैं। सब यही मानते हैं। यह हम में जन्मजात बुद्धि है और परमेश्वर ने हमें यह बुद्धि दी है। आइए हम आगे देखें। रोमियो की पत्री 3:7 उसके 7 में लिखा है, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी की नाई मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूं। मेरे मित्रों, यहां झूठ का अर्थ है नैतिक अयथार्थता। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के दंड से क्षमा का दावा करेगा क्योंकि उसके पाप ने परमेश्वर की महिमा में 4 लगा दिए हैं। आइए देखें रोमियो के पत्र 3:8 में क्या लिखा है, और हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले, जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कितने कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। मेरे मित्रों, इस पद में पौलुस अपने विवाद को तर्क परंतु अमान्य समापन पर लाता है। इसे निरर्थक विवाद कहते हैं। यदि पाप परमेश्वर की महिमा बढ़ाता है तो अधिक पाप और अधिक महिमा बढ़ाएंगे। कुछ लोगों ने पौलुस पर झूठा आरोप लगाया था कि वह यह निरर्थक विचार सिखा रहा था। वह बेतुकी बात थी क्योंकि पौलुस तो बल देकर कहता था कि परमेश्वर पाप का दंड अवश्य देगा। पाप होगा तो निश्चय ही दंड मिलेगा। पौलुस के समक्ष यह व्यंग्यात्मक विवाद किसी को भी जो उपयोगितावाद में विश्वास करता है संत बना देगा। यह एक प्राचीन कहावत है, परिणाम साधन को उचित ठहराता है। मेरे प्रियो, अब आता है परमेश्वर द्वारा मनुष्य पर दोषी होने का आरोप। पौलुस पाप के विषय इस भाग में समापन में मनुष्य को पृथ्वी के न्यायी परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करता है। परमेश्वर सब मनुष्य को, यहूदी और अन्य जाति, गोरा और काला, स्त्री और पुरुष, गरीब और धनवान, सबको दोषी ठहराया है। हम जो भी हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि हम मानव जाति हैं तो हम परमेश्वर के समक्ष दोषी हैं। तब पौलुस हमें परमेश्वर की आरोग्य शाला में लाता है। यह आत्मिक आरोग्य शाला है जहां महान वैद्य हमें देखेगा। हम देखेंगे कि हम पर 14 आरोप लगाए गए हैं, 6 तो न्यायाधीश के समक्ष हैं और 8 वैद्य के समक्ष हैं, जो कहता है कि हम रोगी हैं। सच तो यह है कि हम मरणहार रोगी हैं, यह हमारी दशा है। आइए देखें रोमियो की पत्री 3:9 उसके 9 लिखा है, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, दोष लगा चुके हैं का अर्थ यह न समझे कि हमने उन्हें पापी सिद्ध किया है। पौलुस जो कहना चाहता है वह यह है कि परमेश्वर पाप का दंड देता है, वह मानता है कि मनुष्य पापी है। आपको मानने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यह तो प्रकट है कि मनुष्य पापी है। वह केवल वही बात कह रहा है जो आज प्रकट है। वह कह रहा है कि वस्तु स्थिति यह है कि बड़े छोटे, गरीब धनवान, अच्छे बुरे, सब के सब पापी हैं। यहाँ यह समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि पाप के वश में का अर्थ क्या है। मनुष्य चार प्रकार से पापी है, पहला कर्मों द्वारा, दूसरा स्वभाव से, तीसरा आरोप द्वारा। हम इसे इसी पत्र में आगे चल करके देखेंगे। और तब चौथा है पाप की संपदा द्वारा। हम सब पाप के वश में हैं, संपूर्ण मानव जाति। मेरे मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनुष्य पर प्रथम आरोप। हम रोमियो के पत्र 3:10 में पढ़ते हैं, लिखा है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ध्यान दीजिए, यह पद भजन संहिता 14:1 का संदर्भ है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वह सकारात्मक वाक्य कहता है, एक भी सुकर्मी नहीं। सुकर्म और धार्मिकता एक प्रकार से एक दूसरे के पर्यायवाचक शब्द हैं। धर्मी होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उचित होना। किसके साथ उचित हो? हमें परमेश्वर के समक्ष उचित होना है। यदि हम परमेश्वर के समक्ष उचित हैं तो वह आपके साथी के संबंध में उचित होने से भिन्न है। यदि हमारे मित्रों के साथ हम में मतभेद है तो आवश्यक नहीं कि हम दोषी हों, परंतु हमें मेल तो करना ही होगा। परंतु परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में रहने का अर्थ है उसके नियमों का पालन करना। और सच तो यह है कि आप परमेश्वर के साथ चतुराई नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का उद्धार स्पष्ट सौदा है, या तो उसे स्वीकार करो या अस्वीकार करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी को बाध्य नहीं करता है कि उसका उद्धार स्वीकार करें। आवश्यक नहीं है कि आप उद्धार पाएं, आप इनकार कर सकते हैं। और परमेश्वर कहता है, यह मेरा जगत है, तू मेरी इस छोटी सी पृथ्वी पर वास करता है और मेरी धूप, मेरी हवा और मेरी पानी का उपयोग भी करता है। मैंने उद्धार की एक योजना बनाई है जो मेरे स्वभाव और मेरे गुणों से संबंध है। मेरी योजना और मेरे कार्यक्रम पूरे होकर ही रहेंगे। तू एक पापी है, मैं तुझे बचाना चाहता हूं क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जी हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यह रहा मेरा उद्धार, तू चाहे तो इसे स्वीकार कर या अस्वीकार कर। परमेश्वर पथ भ्रष्ट संसार से यही कह रहा है, वह आज आपसे कह रहा है, वह आपसे भी यही कह रहा है। क्या आपने इसे स्वीकार किया है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने तो इसे स्वीकार कर लिया है। अतः परमेश्वर के समक्ष उचित होने का अर्थ है उसके उद्धार को स्वीकार करना। स्कूल में मेरा एक अध्यापक था जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था। उसका एक खेल होता था कि पूछे कौन उचित है, कौन नियम प्रतिपादन करेगा। मैं तो एक बात जानता हूं कि वह अध्यापक नियम नहीं बना सकता। मैं यह भी जानता हूं कि मैं नियम निर्धारित नहीं कर सकता और आप भी नियम नहीं बना सकते हैं। नियम बनाना परमेश्वर का काम है, चाहे तो उसे स्वीकार करें या चाहे तो अस्वीकार करें। यह परमेश्वर की योजना है, यह परमेश्वर का कार्यक्रम है। एक भी धर्मी नहीं। जी हाँ, परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में एक भी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। परमेश्वर के मानव के आधार पर, परमेश्वर की रीति अनुसार किसी ने भी औचित्य प्रदर्शन नहीं किया है। यह उस न्याय का पहला आरोप है। मेरे मित्रों अब हम देखते हैं उसका दूसरा आरोप है, जिसे हम रोमियो के पत्र 3:11 में पढ़ते हैं। लिखा है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। जी हाँ, दूसरे शब्दों में एक भी नहीं है जो प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण करे। कोई भी ऐसा नहीं है जो जैसा होना चाहता है वैसा हो पाए। तब तीसरा आरोप है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। आज परमेश्वर छिपा हुआ नहीं है, परमेश्वर मनुष्य के साथ लुका छिपी नहीं खेल रहा है, उसने तो स्वयं को प्रकट कर दिया है। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने एथेंस वासियों से कहा था, मार्स पर्वत के दार्शनिक शास्त्र में प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 30 पद में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अतः आज वह पाप को अनदेखा नहीं कर रहा है। परमेश्वर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों से कह रहा है कि वे पापी हैं और उद्धार प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, उसका उद्धार स्पष्ट है। वह यही कह रहा है, एक भी नहीं जो परमेश्वर की खोज करता है। धार्मिक काव्य माला में कहा जाता है कि मनुष्य परमेश्वर की खोज में है, वे कैसे भ्रम में है। कहा जाता है कि विकासवाद में धर्म परमेश्वर की खोज है। क्या धर्म वास्तव में परमेश्वर की खोज है? जी नहीं, बाइबल की शिक्षा में तो ऐसा नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए कि मनुष्य ने अपने आप में तो परमेश्वर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं की है, वह इस दिशा में अधिक दूर तक नहीं गया है, क्योंकि वह गलत मार्ग पर अग्रसर है। वह वास्तव में परमेश्वर से दूर जा रहा है। मेरे मित्रों, आज आप कहां पर हैं? क्या आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? क्या आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है? क्या आप दोषपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप पापी ही बने रहें, या आप चाहते हैं कि आप इससे छुटकारा पाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं? इसके लिए एक ही मार्ग है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और निश्चय ही वह आपका उद्धार करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके जीवन में शांति और आनंद देगा। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में किस प्रकार की बातें घूम रही है, लेकिन परमेश्वर जानता है। वह आज आपको पुकार रहा है, वह आपसे प्रेम करता है। मेरे मित्रों, आज आप निर्णय लें और उसे अपने जीवन में आने दें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु को अवश्य ही जगह दिया है। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी कोशिशों के बदले क्या बताओ तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बताओ तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा। तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा तेरे पास घुल सकेंगे।